ओम शांति। आज आप और हम सभी अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए हैं। तो बाबा मुरली में कहता है कि भक्ति का फल भगवान मिलता है, भगवान डायरेक्ट नहीं मिलता है। जिसने भक्ति की है, भक्ति अति हो गई, संपूर्ण भक्ति हो गई, जैसे झाड़ बड़ा हो गया, फूल निकलता है, फिर फल मिलता है। तो ये ज्ञान जो मिला है ये फल है। तो मनुष्य के जीवन में भक्ति प्राइमरी स्टेज है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका दूध पीना ये फुल आहार है, दूध जरूरी है, उनका वही आहार है। इसलिए जब हम छोटे इस जीवन में बचपन से हर एक व्यक्ति हर प्रकार से भक्ति करके आए, पूजा किया, किसी ने व्रत किया, जप किया, मंदिर में गए, हर प्रकार से चारों धामों की यात्रा किया, फिर भी अपने आप से पूछ लो, भक्ति करने के बाद भी प्राप्ति क्या हुई? भक्ति करने का लक्ष्य क्या था? आप देखेंगे भक्ति का लक्ष्य एक ही, स्थूल प्राप्तियां चाहिए थी। मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए, बच्चों की बीमारी ठीक हो जाए, किसी को और कोई धन की प्राप्ति हो, किसी को मकान चाहिए, स्थूल प्राप्तियों के लिए भक्ति करते हैं। और भक्ति का अल्प काल का फल अवश्य मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन उसका भी एक अर्थ पता होना चाहिए। भक्ति का फल भी कैसे मिलता है देखना। तिरुपति, कर्नाटक में तिरुपति का मंदिर है, बहुत लोग जाते हैं, उनकी श्रद्धा, भावना, विश्वास सब कुछ है, सब जाते हैं, लेकिन सभी की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। अगर उधर भगवान देता है तो सबको देना चाहिए, भगवान सभी का है, सिर्फ इनका है, इनका नहीं, ऐसा नहीं। और जो भी वहां जाते हैं पूरे विश्वास से जाते हैं, श्रद्धा है, भावना भी है, सब कुछ है, तो जाते हैं। किसी को फल मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कारण थोड़ा सोचना चाहिए, अल्प काल के लिए हो, बहुकाल के लिए भी हो, तो वहां फल प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता है। उसको बाबा ने मुरलियों में ज्ञान के सागर बाप ने स्पष्ट किया है। बच्चे, बीज बहुत अच्छा है, अगर धरती ठीक नहीं है, बीज बोलो तो कुछ उगता नहीं है। अगर कहीं जगह पर हमारा भाग्य बहुत अच्छा, उसको हमने कहा भाग्य, पुण्य, अगर हमारा भाग्य है उस स्थान पर, पवित्र स्थान है, स्वच्छ स्थान है, वो धरती बहुत अच्छी है, हमने किया हुआ भाग्य जो है, पुण्य जो है, वहां फलीभूत होता है। अगर किसी के पास अपना किया हुआ भाग्य नहीं है, पुण्य नहीं है, वहां जाने के बाद भी कुछ प्राप्ति नहीं होती है। मूर्ति से वहां से कुछ नहीं मिलता है, हमको लगता है वहां से कुछ मिला, अपना किया हुआ भाग्य ही धरती चाहिए, वातावरण चाहिए, उस वातावरण में जाते ही फलीभूत होता है। अगर भाग्य नहीं है, कुछ पुण्य नहीं कमाया, वहां जाने के बाद भी प्राप्ति नहीं होती है। तो प्राप्ति का आधार अपने किए हुए श्रेष्ठ कर्म है, भाग्य है, पुण्य है। अब भक्ति मार्ग में पुण्य करते हैं, हम दान करते हैं, किसको देते हैं? शरीर को। किसी को आपने धन दिया, किसी को आज के दुनिया में जयपुर फूट कहते हैं, माना जिसको पाव नहीं है, फ्रैक्चर हो गया एक्सीडेंट से, आर्मी के अंदर भी होता है, तो रेडीमेड पाव बना के देता है, जयपुर फूड कहता है। किसी बच्चे को आपने किताब दिया, कोई बीमार व्यक्ति को आपने दवाई दिया, हॉस्पिटल में डाला, ये सब कुछ किसको दिया? शरीर के लिए। शरीर अल्प काल के लिए, सदा के लिए नहीं, उसका फल भी अल्प काल के लिए है। तो भक्ति करते समय जितने भी साधु संत तपस्या करते हैं, मैंने एक बहुत बड़े बैंगलोर से एक संत थी आई थी सन्मुख, बहुत मिलते हैं साधु संन्यासी। तो हमने कहा आप हिमालय पर गए, उन्होंने कहा इतना हिमालय पर इतनी ठंडी है, इतनी तपस्या किया, क्या किया, क्या तपस्या किया, क्या खाना खाया। कभी कभी नजदीक होते तो सब पूछते हैं, कहते ऐसे गुफा में बैठकर इतनी ठंडी है कि ओम की धुनी कर देते हैं। फिर मैंने पूछा खाना कौन देता था, खाना कौन लेके आएगा गुफा में, भूख लगती नहीं, कहते हाँ भूख लगती नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तपस्या करने गए लेकिन खाना कौन देता था। तो उन्होंने कहा जब हम आंखें बंद करके ओम की धुनी करके बैठते सारा दिन, कोई संकल्प नहीं खाना भी चाहिए, तो भी एक समय आता है पाव के बाजू में गर्म लगता है, गर्म लगते ही आंखें खोलू तो दो रोटी और सब्जी पत्ते को लपेट कर रखा हुआ है। तो किसने रखा, तो कहता आप सोचो ऐसे हिमालय पर्वत पर गुफा में बैठे हैं तो कौन खिलाता है। फिर मैंने पूछा कि क्या क्यों तपस्या कर रहे थे आप, क्या आपके अंदर, क्योंकि पति भगवान कौन, भगवान की प्राप्ति के लिए गए, कुछ वस्तु नहीं चाहिए। तो भगवान वो है पतित आत्मा को पावन करता है। तो पूछा आपने साधना करने से क्या आपके पाप मिट गए, क्या आपको गुस्सा नहीं आता है, जब रात को सोते हो बुरे स्वप्न नहीं आते। जब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं जवाब दिया, मुझे लग रहा था कि कोई कन्या है तपस्या कर रही है, तो देखा मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा, तब मुझे मैं कही थी किसी ने बुलाया, जब उनके नजदीक देखने के लिए गए मेरे आंखों से आंसू नहीं आए। हां वो नहीं है, लेकिन मैंने पूछा था क्या पुराने संस्कार पाप मिट गए, भक्ति में अल्प काल के लिए प्राप्ति है, नहीं ऐसे नहीं। तब बाबा ने भी कहा बच्चे भक्ति कभी छोड़ना नहीं, अगर भक्ति करते हो जरूर करना चाहिए। भक्ति पूरी हो गई, फल झाड़ बड़ा हो गया, फूल निकलेगा, आज दे तो कल फल निकलेगा, कोई झाड़ तुरंत फल देता है, कोई झाड़ 5-10 साल के बाद फल देता है, लेकिन फल मिलता है। फल क्या, ज्ञान, समझ, क्या करने से भाग्य बनता है और क्या नहीं करने से भाग्य बनता नहीं है, मिटता भी है, पाप बनता भी है पुण्य भी बनता है, तो उसका ज्ञान चाहिए। तब कहा हम कर्म करने के लिए आए, इस संसार में क्यों आए, शरीर में क्यों आए, कर्म करने के लिए आए। कर्म प्राणी भी करते हैं और मनुष्य भी करता है, सवेरे उठते ही पानी पीते हो, मुंह धोते हो, प्राणी भी करता है। प्राणी और मनुष्य में अंतर है, प्राणी को बुद्धि नहीं है, कुछ भी खिलाओ खाएंगे, मनुष्य को कुछ खिलाओ ये मेरे लिए ठीक नहीं, ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, समझ दी है। तो मनुष्य से श्रेष्ठ, प्राणी से श्रेष्ठ मनुष्य, क्यों, उसके पास बुद्धि है, समझ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से प्राप्ति क्या है, तो उसका ज्ञान है। तब कहा सत्संग से सदगति होती है, अगर सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं है, हम मेहनत करते हैं, देखो शुरू में तपस्या करते हैं हिमालय पर जाके, साधु संत कितने तपस्या, एक पांव पर खड़े होते हैं, जप करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, क्यों, किसके लिए, क्या चाहते हैं, मोक्ष, मतलब जीवन में नहीं आना है फिर से। हां हो सकता है, देख लो एक सीडी के अंदर 5 गीत भरे हुए हैं, आप 5ों गीत को मिटा दो, फिर वो सीडी अगर टेप रिकॉर्डर में डालो आवाज आएगा नहीं, खाली हो गया, लेकिन मिटाना है पूरा, इतनी तपस्या चाहिए, अंदर जो कुछ संस्कार है स्थूल सूक्ष्म पाप पुण्य सब कुछ इरेज करो, खाली सीढ़ी, खाली हो गया तो दोबारा जन्म कैसे लेंगे आप, ऊपर रहेंगे, लेकिन भगवान ने जो सृष्टि रची इसके लिए नहीं, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं घर में बिठा के रखने के लिए नहीं, बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, नौकरी करने भेजेंगे कि बाहर जाना है, घर में सब कुछ है तो भी बाहर पढ़ने के लिए जाओ, पता है माँ बाप को बाहर जाएंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, संगति संग दोषा, गलत संग लग जाएगा, फिर भी भेजेंगे। तो ये सृष्टि का जो रचयिता है, परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम का सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। सभी ने कहा, सभी धर्म वालों ने कहा, भगवान कौन? सत्य है, असत्य नहीं, वहां अंधेरा नहीं है, सदा रोशनी है, प्रकाश है। गॉड इज लाइट एंड माइट, शक्ति भी है उसके पास। तब उसको कहा ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। तो वो कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो कहता मेरे से ध्यान लगाओ, तो उस शक्ति से जो आत्मा पतित बनी तो पावन बनेंगी। जो पाप कर्म किया, जो आत्मा ऊपर से आई, पुण्य आत्मा आई है, पवित्र आत्मा आई है। नहीं तो इस सृष्टि में दुख का नाम निशान नहीं, पांच विकारों का नाम निशान नहीं है। यहां भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था, भारत में देवताएं थे, भारत एक ही खंड था, सारे विश्व के अंदर ग्लोब के ऊपर एक ही खंड था। बाद में एक के बाद एक एक आए, पांच खंड हुए, देवताएं भारत में थे, तब का भगवान भारत में आते हैं। क्यों क्यों आते हैं? पाप आत्मा को पुण्य आत्मा करने के लिए। मनुष्य डॉक्टर के पास कब जाता है? जब अपने को बीमार समझता है, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो बीमार समझता है तो शरीर की बीमारी ठीक करने वाले का नाम फिजिशियन, डॉक्टर। तो इस शरीर के अंदर आत्मा है। आज तक सारी दुनिया में, सारा रामायण महाभारत गीता कुछ भी ले लो, कहीं गीता में आत्मा का नाम है? लेकिन वो आत्मा इस शरीर में कहां है? आत्मा शरीर में रहकर क्या कर्म करती है? यह आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है? कोई ज्ञान ही नहीं है, भौतिकी है। तब कहते हैं सारे विश्व के अंदर एजुकेशन सोसाइटी है, सारा विश्व कहता है हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। जो भी पढ़ाया जा रहा है भौतिक पढ़ाई जा रहा है, जैसे मां गुरु है, बच्चों को कहते दो हाथ है एक ही जैसे है, नहीं बच्चे इस हाथ से खाना खाना चाहिए, इस हाथ से और काम करना चाहिए। सबसे पहला गुरु मां बच्चों को सिखाती है, फिर स्कूल में जाने के बाद, फिर पहले गुरुकुल में भेजते थे, गुरु भी शिक्षा देते थे, लेकिन भौतिक धनुर्विद्या सिखाया और कुछ सिखाया, पूजा करना सिखाया, जप करना सिखाया, लेकिन आप आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड से आए हुए आत्मा हो, इस शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हो, इन आंखों के द्वारा देख रहे हो, इस मुख के द्वारा बोल रहे हो, आप अलग, यह शरीर अलग। यह शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, कल छोड़ देना है, यह परमानेंट नहीं, परमानेंट अविनाशी चैतन्य आत्मा है। उस आत्मा का ज्ञान नहीं। हमने देखा अमेरिका में अमेरिकन व्यक्ति है, सिर्फ इंग्लिश और संस्कृत जानता है, अपने एक सेंटर में पीस विलेज करके है, वहां आया कि उसको गीता लिखनी थी, किताब लिखना था, तो बहुत जगह ढूंढा मकान उसको चाहिए। किसी ने कहा ब्रह्मा कुमारी के पास 300 एकड़ जमीन पर है पीस विलेज करके, वहां आपको जगह मिलेगा अकेले में एकांत में बैठने के लिए। तो वहां आया, मैं था उस समय, उसने कहा मुझे एक महीने के लिए कमरा दे दो एकांत, मुझे किताब लिखना है। बहुत सारे कमरे थे, बहन जी ने कहा आओ रहो। तो एक दिन मुझे कहा बहुत पीछे एक सन्यासी आया है, किताब लिखना, आप कभी मिलो। हम मिलने गए तो बात किया, तो इंग्लिश और संस्कृत जानता और कुछ नहीं। कुछ भी बात करो गीता का श्लोक सुनाता है, कबीर का श्लोक सुनाता है, रामायण का सुनाता है, महाभारत का सुनाता है, इंग्लिश जानता है नहीं तो संस्कृत, अंग्रेज है अमेरिका का ही। तब मैंने पूछा आप किसके लिए क्या किताब लिख रहे हो, आपने श्री कृष्ण को तो देखा नहीं, श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को ज्ञान सुनाया था, आप कैसे लिखेंगे? कि मैंने गीता के पूरे ज्ञान सुना है, पढ़ा है, अच्छी तरह से अध्ययन किया है, लेकिन मुझे और रिफाइन करके लिखना है। तो हमने पूछा गीता का पूरा अध्ययन किया, तो कहा गीता में बुद्धि का ज्ञान कहां है, क्योंकि आज तक साइंस ने पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? आज तक सारे विश्व के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाया फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तो भगवान को इस सृष्टि पर क्यों आना पड़ा? जो सारे विश्व के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से मनुष्य अपने आप को पावन नहीं बना सकेगा, संपन्न नहीं बना सकेगा, एवर हेल्दी एवर वेल्दी नहीं बना सकेगा। जो ज्ञान है अल्पज्ञ कहा, लिमिटेड है, और एक ही जो निराकार है वो ज्ञान का सागर है। वो स्वयं आके ये ज्ञान देता है, आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं। तब भगवान आत्मा के मां बाप है, जैसे मां बच्चों को दो हाथ है उसके है, उसका अधिकार है, जैसे चाहे कर सकता है, तो भी सिखाती है बच्चे ये हाथ से नहीं खाना है, इस हाथ से खाना है। तो भगवान आत्मा के मां बाप है, तब कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माता भी है पिता भी है। तो कैसे मां बाप होगा? गॉड फादर है, ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है, साकार शरीर चाहिए, निराकार बाप ब्रह्मा मुख से भारत वालों को भारत के सृष्टि पर आकर ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? जो दुनिया में अब तक किसी ने नहीं सुनाया, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आत्मा का ज्ञान। ये आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं, एक मन है, ये मन सोचता है, मन के बाद एक बुद्धि है, बुद्धि निर्णय लेती ये विचार मेरे लिए योग्य है कि अयोग्य है। मन में विचार आया, जैसे हम कहते हैं व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, ये दुनिया का ज्ञान है। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद जैसे सोचेंगे वैसे नहीं, विचार बहुत आते हैं, ये करो ये करो, ये खाओ ये नहीं करो, विचार आते हैं। माइंड इज, मन एक घोड़ा है, तूफान है, उसके पास बुद्धि है, बुद्धि कहती है बच्चे मन ये काम नहीं करना चाहिए, ये कर्म मेरे लिए योग्य नहीं, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। ये ज्ञान किसने सिखाया? दुनिया में नहीं था, किसी को देखते ही गलत विचार आए, किसी ने गुस्सा किया, कुछ गलत किया, गलत विचार आया, शराब पिया, तंबाकू खाया, मन को सप्रेस करते थे। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद कहा निराकार शिव बाबा ने, बच्चे मन को कितना दिन सप्रेस करेंगे, कितना दिन कंट्रोल करेंगे, मन को समझाओ। जैसे मां बच्चों को समझाती है, टीचर स्टूडेंट को समझाता है, अगर किसी को देखते ही मेरे मन में गलत विचार आया कौन समझाएगा? तज आज दुनिया में टेंशन कहते हैं, तनाव। टेंशन कहां से आया? हां मन सोचता है गलत, दवाई नहीं है, नींद की गोली ले लो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान दिया है, रोज अगर ये ज्ञान सुनते हो तो समझ है, हां इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये कौन है? इस शरीर में कौन है? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है। तब गीता में कहा अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है, तो भी पत्थर मारना चाहिए नहीं। धर्म का मूल है क्षमा, दया, वही यहां नंबर वन राजयोग है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय नंबर वन राजयोग, कुछ नहीं करना है। किसी पर नजर गई, चाहे काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोई भी हो, किसी को देखते ही पता है इस शरीर में कौन है। कोई रावण का बच्चा नहीं, भगवान का बच्चा है। समझ आ गया इस शरीर में कौन है? हां, ये सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा है। बाबा, इस आत्मा का कल्याण करो। किसी साधु संन्यासी के पास जाओ आप अपने बच्चों को लेकर, स्वामी जी आप आशीर्वाद करो, तो वो आशीर्वाद नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? भगवान आपका भला करेगा, करने वाला भगवान। यहां भी रिफाइन तरीके से, भगवान कौन, कहां रहता है, क्या करता है, कब आता है, किस रूप में आता है, क्या ज्ञान देता है, समझ मिली। तो समझने के बाद अपने आप को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, मैंने बहुत जन्मों से क्या किया। तब कहते हैं पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहते, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महात्मा। पाप शरीर, पुण्य शरीर कहते हैं नहीं। तो आत्मा के अंदर पाप है, शरीर के अंदर नहीं। आत्मा के अंदर पाप, गलत विचार आया, शरीर के अंदर सिक्रेशन होता है, अपने आप बीमारी तैयार होती है। बीमारी शरीर के अंदर नहीं होती, आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर कैसे पता चलेगा आपको? आप पूछेंगे पाप आत्मा, पुण्य आत्मा दिखाओ। अगर आज डॉक्टर के पास जाओ, किसी को कहो कि मुझे कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर तुरंत एक्सरे निकाल के दिखाता है, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दिखा सकता है। क्या यहां पाप आत्मा, पुण्य आत्मा दिखा सकते हो? हां। तो जब आप रात को सोते हो आंखें बंद कर, स्वप्न कहां से आए? स्वप्न बताते हैं, ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। आपके पास कितना धन है, स्वप्न बताता है। आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न आते हैं, पाप आत्मा है। अगर कोई कहता है आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा। उसको आग में भी डालो, आग भी नहीं जलाएंगी। उसको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता कौन? फर्श, धरती के संस्कार नहीं आए, लाइट है, प्रकाश से बना हुआ है, प्रकाश का शरीर है। उसको कहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्मातीत हो गया, कोई भी पाप नहीं, एक बाल भी उसका कोई हिला नहीं सकता है। तब कहा इस पाप को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप कितना भी तपस्या करो, तब शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। सिर्फ भक्ति से अल्प काल के लिए बीमारी ठीक होंगी, कोई वस्तु मिलेगा, किसी को कार चाहिए, किसी को मकान चाहिए, और कुछ चाहिए, स्थूल चीजें मिलेंगी अल्प काल, क्योंकि शरीर समझ के साधना करते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ज्ञान, आप कौन हो? शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा के अंदर पाप है, उस पाप को मिटाने के लिए एक निराकार शिव ने, देखो श्री राम ने, श्री कृष्ण ने विष नहीं पिया है, सिर्फ शिव ने विष पिया है। तो ये पांच विकार मनुष्य को दुख देता है, नहीं तो मनुष्य के जीवन में सृष्टि पर दुख का नाम नहीं है। स्वर्ग राम राज कहा, सब प्रकार का सुख भगवान ने ऐसी सृष्टि रची थी, तो मनुष्य रचयिता को भूल गया, अपने को शरीर समझने लगा। हाँ, ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये काला है, ये गोरा है, शरीर को देखते ही शरीर के गुण जागृत हो गए, शरीर समझ के चलने लगा। तब ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। देखो रामायण में सीता को पता नहीं था कि ये रावण है कि साधु है। सीता तो कोई साधारण नारी तो नहीं थी ना, हमें कैसे पता चलेगा। तब कहा कि ज्ञान चाहिए। ज्ञान को कहते हैं दिव्य दृष्टि। अर्जुन के सामने भी श्री कृष्ण खड़े थे तो भी समझ नहीं रहा था। तब अर्जुन को कहा, आप मुझे देख नहीं सकते हो, दिव्य दृष्टि देता हो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये जो ज्ञान है, ये बुद्धि नेत्र था, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं था। अभी भी आप पूछो किसी को, दिल कहां है? दिल से याद करो, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। मैं दिल से बात करता हूं, सच्चे दिल से बात करता हूं, ये दिल बोलता है? पूछ लो, अभी भी कहते हैं, जिसको ज्ञान पूरा समझ में नहीं आया, अभी भी कहते हैं, मैं ये दिल से, सच्चे दिल से बात करता हूं। ये दिल हार्ट निकाल के दूसरा लगाते हैं आज की दुनिया में, ये खून चलाता है। दिल जो बुद्धि का ज्ञान नहीं था, वो शिव बाबा आके ज्ञान देता है। बच्चे दिल जो है ये नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं है, आत्मा का। बुद्धि का नाम है दिल। दिल के अंदर कोई बात रखो नहीं, दिल के अंदर सब कुछ याद रहता है, बुद्धि के अंदर याद रहता है। इन्होंने 10 साल पहले गुस्सा किया था, इन्होंने ऐसा किया था, तो बुद्धि के अंदर संचित कर्म कहते हैं, सब याद रहता है। तो उसको मिटाओ। उसको कैसे मिटाए? उसने वो आत्मा के अंदर, आत्मा एक शक्ति है, उस शक्ति को मिटाने के लिए और एक शक्ति चाहिए, जो सदा संपन्न है, वो उसको कहते हैं परमात्मा निराकार। उसकी शक्ति अगर है, उसको मिटा सकते हो, एनर्जी कॉन्टैक्ट। तो वो इधर साधना चाहिए। तब कहा ज्ञान से गति सदगति। ज्ञान ध्यान कैसे करना चाहिए? अगर आप 10 घंटे भी बैठे रहो, ध्यान लगता नहीं, इधर उधर के विचार आएंगे, मन विचार करेगा। मन का काम है, माइंड इज ए फ्लू, मन एक हवा है, चलेंगी। पुराने बातें अंदर भरी हुई है, यहां बैठे बैठे शांत में बैठे हो आप, कोई आवाज नहीं, तो भी यहां बैठे बैठे कोई कितने अपने घर में कहां कहां चक्कर लगा के आते हैं। कौन? बुद्धि भटकती है। तो इधर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे सहज ज्ञान, ध्यान, योग, मन और बुद्धि को एक करो और मेरे से, परमात्मा से जोड़ो, तो वो शक्ति इस पाप को मिटाती है। अगर आपको लाइट चाहिए, एक तार जोड़ो तो लाइट नहीं मिलती, दो तार जोड़ना चाहिए। आत्मा के पास भी दो शक्तियां हैं। तो ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान से प्राप्ति क्या? ये मन और बुद्धि। देखो आप शांत होकर बैठो, मन में विचार आते हैं, अच्छे विचार भी करो, तुरंत बीच में दूसरा विचार आता है, कहां से आए हो? एक दरवाजा ये बंद कर दिया आपने, हवा नहीं आना चाहिए, बंद किया, लेकिन ये दरवाजा खुला है। दो दरवाजे हैं आत्मा को, दुनिया ने सब ने आज तक का एक ही, मन को जीत लो, मन मेरे में लगाओ, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तब आपको लगेगा इस ज्ञान मार्ग में आने से क्या प्राप्ति है। जितनी तपस्या सब कुछ करने से पाप नहीं मिटा, तो इस ज्ञान के रास्ते पर चलने से, ज्ञान समझने से किए हुए पाप को आप मिटा सकते हो। तब कहा जैसे कोई चीज बीज अग्नि में डालो तो भस्म होता है, फिर दोबारा उगेगा नहीं, तो वो योग अग्नि चाहिए। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान का काम क्या है, क्या करता है वो आकर? डॉक्टर क्या करता है? ऐसा नहीं कि ये बीमारी मिटने वाली नहीं, सदा रहेंगे, तो कोई दोबारा जाएगा नहीं। आप दवाई ले लो, ये करो, दर्द कम कर सकते हैं, मिटा सकते हो, विश्वास देता है, होपलेस को भी होप देता है। तो यहां भगवान भी होपलेस आत्मा है, बहुत पाप है, बहुत अशांति है, दुख है, तो मेरे शक्ति से इस सब को परिवर्तन कर सकते हो, मिटा सकते हो, वो साधना चाहिए। नहीं तो भक्ति अभी भी करते रहो, पूजा करो, मंदिर में जाओ, अगरबत्ती जलाओ, करो, लेकिन क्रोध मिटा? पूछ लो आप, अपना क्रोध मिट गया? कितने बड़े बड़े साधु सन्यासी कहां कहां है? क्या चाहिए? शरीर की तो स्थूल चीजें मिल सकती है, सूक्ष्म आत्मा का परिवर्तन चाहते हो, मनुष्य से देवता बनना चाहते हो, दैवी गुण चाहते हैं, हर एक कोई भी काम करो, काम नीट क्लीन एक्यूरेट होना चाहिए। कैसे होगा वो? जब तक ध्यान नहीं, बुद्धि नहीं है, ये सही है, ये गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं था। देखो रास्ते पर जाते थे हम, गरीब है, किसी को दान दिया, गरीब है, 10 रुपया दे दिया आपने, आपने क्या दान दिया, पुण्य का काम किया, उसने जाके शराब पिया, तंबाकू खाया, कर्मों की गति अति गुह्य है। आप कहेंगे मैंने दान किया, ज्ञान है, पात्र को देख के दान देना चाहिए, दान करना ही पुण्य नहीं, ये ज्ञान था पहले। महाभारत में भी सिखा बताया, भीष्म पितामह को अंतिमे तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, श्री कृष्ण खड़े थे, पूछा मैंने बचपन से आज तक किसी को दुख नहीं मिल दिया, ये दुख मेरे लिए क्यों? तब कहा बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका लक्ष्य था, भावना थी, हिंसा नहीं करनी चाहिए, इतना ही था। सांप को उठा के बाजू में किया, रस्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, कहां गिर गया वो? जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। तब कहा कर्मों की गति है, पता नहीं था। हम समझते संसार में जा रहे हैं, दान करना चाहिए, सीता को पता नहीं था कि सामने कौन है, दान करना चाहिए, इतना ही पता है। साधु को खाली हाथ भेजना नहीं, दर पर कोई आया खाली हाथ भेजना नहीं, इतना ही पता है। तो ज्ञान चाहिए, किसको दान करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तब कहा ज्ञान से सत गति, अगर ज्ञान नहीं दुर्गति, फिर से पाप हो रहा है। तो क्या हुआ सीता का, क्या हो गया? तब ज्ञान चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए कि सही कर्म क्या, गलत कर्म क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। कर्मों की गति अति गुह्य है, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तब का ज्ञान चाहिए। ऐसे नहीं हमने ज्ञान पढ़ा, सुना किताब, वो किसी की कहानी है, किसी का जीवन कहानी है, उनके जीवन में हुआ, मुझे क्या करना चाहिए आज। तब का ज्ञान से गति सदगति। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिर्फ दो ही बातें हैं, एक ध्यान योग लगाओ कि उस शक्ति से अंदर किया हुआ पाप को मिटाना है, दूसरा ज्ञान चाहिए, दोबारा मेरे से पाप नहीं होना चाहिए। हां कल किया था पता नहीं था, आज ज्ञान सुनने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। रोज सवेरे मुरली कहते हैं, मुरली रोज क्यों सुनना चाहिए, एक बार सुन लिया बस, रोज क्यों सुनना चाहिए? हाँ रोज ज्ञान चाहिए कि आज सारे दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ कल हम ऐसे करते थे, आज मुरली में ज्ञान आता है, बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो समझ मिल गई। वो अगर आप नोट करके याद रखते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, सारे दिन में अटेंशन ध्यान देते हो, तो आप अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, भ्रष्ट कर्म से श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ जीवन। ऐसे नहीं मन में आया कोई किसी को दान करना चाहिए किया नहीं, वो पहले था मन में जो आया वो किया। अभी मन में आने के बाद बुद्धि का ज्ञान दिया, इनको दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कोई गरीब के रूप से आता है मुझे दे दो, आपको परखना चाहिए, देखना चाहिए ये दान का पात्र है, योग्य है, क्या देना चाहिए। हाँ भूखा है खाना दे दो, अगर पैसे देंगे तो शराब पिएगा तंबाकू खाएगा। तो कर्मों की गति को जानने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये दिव्य नेत्र बुद्धि का ज्ञान मिलता है। तो वो ज्ञान अगर हम रोज याद रखते हैं तो हमारे कर्मों के अंदर, व्यवहार के अंदर, अभी निर्वर भाई कह रहा था कि सबको बहुत प्यार से देख लो, प्यार से चलो, तो प्यार कैसे आएगा, समझ ज्ञान। क्यों ये सभी गीता में शास्त्रों में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, दो भगवान नहीं है, एक ही भगवान, एक परिवार। किसी पर नजर कितना काला भी हो, लंगड़ा भी हो, अंधा भी हो, बहुत खराब है, तो भी ये भी शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा आप इसका कल्याण करो, शिव बाबा इसको आप इसका उद्धार करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, दुआएं। तब आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे बाप के श्रीमत पर, आज्ञा पर चलते रहो, दुआएं अब गुप्त दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपको ऐसे समय पर काम में आएंगी। तो इसलिए रामायण में आता है एक बार राम पंचवटी में अकेला हो जाता है, कोई नहीं है, सब लक्ष्मण भी गया, सीता भी गई, तब खरभूषण ये दोनों राक्षस राम पर हावी हो जाते हैं, सब अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तब क्या करो, आकाशवाणी होती, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो। तो याद आते ही अस्त्र छोड़ा, सब मूर्छित हो गए। ये क्या कि जब वो वनवास में जा रहे थे, बहुत साधु संतों ने उनको वरदान दिया था, अस्त्र दिया था, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी उस समय ये वरदान काम में आएगा। हमारे जीवन में वही रोज शिव बाबा के श्रीमत मुरली आज्ञा के अनुसार चलते रहो, एक एक बूंद भगवान के ले लो, इकट्ठा करो, ये है वरदान, ये है अस्त्र, ये ज्ञान, एक एक ही बूंद एक एक से ले लो रोज। जब समय जीवन में चलते चलते कभी ऐसी परिस्थिति आएंगी, वहां कोई नहीं आएगा, ना मित्र ना मां बाप, कोई नहीं होंगे, उस समय आता है शिव बाबा, बाबा बाप जो आपने पूंजी जमा किया है, पुण्य जमा किया है, जो ज्ञान अंदर जमा किया है, औरों को सुख दिया है, औरों का कल्याण किया है, वो पुण्य आज समय पर याद आएगा, ऊपर से आकाशवाणी होती है, स्मृति आती है, अरे ये काम करना चाहिए। ये कौन किया हुआ पुण्य जमा। तब बाबा ने आज कहा कि बच्चे श्रीमत आज्ञा पर चलते रहो, श्रीमत के अनुसार, श्रीमत रोज मुरली में मिलता है, सुना, सुनने से भी कुछ नहीं, लिस्निंग इज नॉट एवरीथिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, मैंने बहुत कुछ पढ़ा कोई फायदा नहीं, सुनने के बाद कुछ समझ में आया, बुद्धि के अंदर धारण है, याद है, समय पर काम करता है। तो धारणा करो, धारणा चाहिए। तो एक ही रोज एक मुरली के पॉइंट ले लो, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में है। तब उसको कहा ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। शिव बाबा को कौन प्रिय है, भक्ति वाला नहीं, भावना वाला नहीं, ज्ञानी तू आत्मा, समझे उसको किस समय क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, समझदार चाहिए। अगर ऐसे करता है, जब साधना करने बैठता है, सवेरे योग करने बैठते हैं, विधि पता है, ऐसे बाबा मेरा ये काम करो, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, तो क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे, अभी भी मांग रहे हो, भगवान के बच्चे और मांग रहे हो, अधिकारी हो, तो भक्ति में मांगना होता है, मेरा ये करो, मेरा ये करो, मुझे ये दे दो। नहीं, यहां मांगने वाला नहीं, अधिकारी है ना। मेरा बाप कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम सफल होगा ही, विजयी रतन हो, ये स्मृति रहती है। तो उसके लिए भी साधना चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसे कहने से नहीं। तो साधना करने की विधि बताया, सवेरे शाम 10 मिनट, अब हम 10-15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे। क्यों? आप और हम सभी बाबा से मिलने आए, तो बाबा कैसे मिलेगा? निराकार शिव बाबा कैसे मिलेगा? बाप दादा कैसे मिलेंगे? साकार रथ चाहिए। तो रथ बॉम्बे में है, तो रथ को इधर लाने के लिए शक्ति देने पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं आएगा। अगर आपको कहीं जाना है, कार चाहिए, तो कार अपने आप मिलेगा? कुछ देना पड़ेगा। तो यहां भी गुलजार दादी को आप और हम सब मिलकर, कोई भी बीच में उठना नहीं, एक उठते हैं दूसरों को डिस्टर्ब होता है, 5 मिनट बैठना। और कैसे बैठो करके ध्यान करो कि बैठकर अपने आप को बाबा ने योग करने की विधि बताया, ऐसे याद नहीं, अपने आप मन ऊपर नहीं जाता है। आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, बात कर सकते हो, नंबर चाहिए। तो यहां भी अगर आपका आवाज परमधाम तक, सूक्ष्मतन तक जाना चाहिए, नंबर चाहिए। उसको कहते आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो आत्मा कैसे समझो? भाई जी तो दिखाई देता है। हाँ, पूछते भाई जी आपका नाम, आप कहां से आए हो, क्या करते हो? समझ में आया, तो समझ करके ध्यान लगाओ। तो अभी बैठेंगे, बैठकर आराम से आंखें खोल के बैठो, बीच में कोई उठना नहीं, 5 मिनट योग करना चाहिए। जब तक 12 बजे का, 1 बजे का गीत बजेगा, तो और 10 मिनट है। तो आराम से आंखें खोल के बैठो और अपने आप से बात करो, मैं कौन, पहले सुनना फिर करना, मैं कौन, फिर मेरा रूप। सबको पता है मैं कौन कहते ही तुरंत बुद्धि कहती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारे भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे गुण दैवी गुण, 7 गुण है। जब मैं परमधाम से आया था, कितना पवित्र था, कितना शांत शीतल था, ऐसे बन करके मुझे जाना है, एक एक गुण याद दिलाओ। हाँ, मैं आत्मा इस भ्रकुटी में बैठकर इन आंखों से देखता हूं, अभी आंखें बंद नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, आंखें खोल के बैठना, शरीर का यूज नहीं करो, रिलैक्स, डिटैच। फिर 5वां, मैं कहां से आया? परमधाम से आया। तो परमधाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? पवित्रता का सागर है। हमारा बाप कौन और मैं कौन? कंपेयर करो। बाबा ने कहा बाप समान बनो, मांगो नहीं, बाबा ये दे दो, ये दे दो, ये ठीक करो, नहीं। बाप कौन? शांति का सागर, कभी गुस्सा नहीं करता है। बाबा मैं आपका बच्चा हूं, आज के बाद प्रतिज्ञा करो, इस शांत वातावरण में बैठे, देख लो कितने बाबा के बच्चे बैठे हैं, सब मिलके एक शुभ संकल्प करो, संकल्प सिद्धि। आज बाबा ने कहा सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिव बाबा तक पहुंचता है। संकल्प की चीज है यहां, वाणी की नहीं। तो स्थूल नहीं, सूक्ष्म। तो आध्यात्मिक ज्ञान से पतित आत्मा पावन बन सकती है। और जितना जो इन 5 विकारों से मुक्त, कम से कम एक क्रोध मुक्त, क्योंकि हिम्मत का एक कदम रखो कहा। आज बाबा ने कहा हिम्मत से विकारों पर विजय प्राप्त करो। हिम्मत चाहिए, अपने आप नहीं होता है, सहन करना पड़ता है। सामने वाला बहुत दुख देता है, बहुत गुस्सा करता है, वो करेगा। मेरा जीवन का लक्ष्य है मुझे नहीं करना है, मुझे मेरे शिव बाबा का श्रीमत है। तब हम कहते हैं बाबा से मेरा प्यार है। प्यार का अर्थ रिस्पेक्ट, रिगार्ड। उनकी उन्होंने जो मुझे जो कहा वो मुझे करके दिखाना है, इसी जीवन में आज ही करके दिखाना है। तो ऐसे एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। बाप कैसा और मैं कैसा? मैं भगवान के नजदीक जा सकता हूं, अगर किसी ने एक मंदिर बनाया आप जाके पूजा कर सकते हो? नहीं, ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण ही मूर्ति को हाथ लगा सकता है, पवित्र आत्मा ही भगवान के नजदीक जा सकता है। तो पवित्र बनना जरूरी है, तो उसकी शक्ति चाहिए, वो पतित आत्मा को पावन करता है। तो ऐसे हम 5 मिनट बैठेंगे सफेद लाइट, नहीं तो आंखें बंद करते सबको नींद भी आती है, नींद का समय हो गया ना। हाँ, 5 मिनट साधना करो, नींद रात को किया है ना, समय अभी कौन सा है, समय पर बुद्धि को याद है कि समय क्या करना चाहिए। खाने पर डाइनिंग टेबल पर बैठे उस समय मुंह खोलना है खाने के लिए, सोने के खटिया पर गए तो आंखें बंद करनी है, अभी आंखें बंद नहीं करनी है। इसको कहते समझ। उसको बाबा ने मुरली में कहा स्वराज्य अधिकारी, अपने इंद्रियों पर, इंद्रियों को अधिकार से चलाओ, नहीं आंखें हिलाना नहीं, आंखें बंद नहीं करना है, मुंह खोलना नहीं, इंद्रियों को यहां जीत लो। स्वराज सो विश्वराज। अपने हमें नींद आ रही है, अपने पर कंट्रोल ही नहीं है। जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो विश्व के राजा ये कैसे करेगा? भगवान आया है विश्व की राजाएं देने के लिए। मेरे एक एक बच्चे राज अधिकारी है, अपने अपनी कुछ करो। बहुत सुनते हैं, अभी 5 मिनट बैठना, कोई भी बीच में हिलना नहीं, उठना नहीं। ओम शांति।